Marcus Mustard. Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on the following two lines at 2342-1050, 2331-4444. Please remember to prefix 011 if you're calling us from outside Delhi. I am Ishan Mittal, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena.
Namaskar. Aarthik khabron ke karyakram Market Mantra mein aapka swagat hai. Is samachar hum इसमें हम आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे और आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े मुद्दों पर आपके प्रश्नों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444 और दूसरा नंबर है 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रकाश चावला। प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार, धन्यवाद।
और पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं ईशान मित्तल।
SEBI exempts additional disclosure requirements for FPIs having more than 50% of their India equity AUM in a single corporate group. Brent crude oil prices rise over 3% during the week to end at $85.33 per barrel, and on Wall Street the Dow ends 0.5% lower as investors wait the interest rate outlook ahead of next week's Federal Reserve meeting.
सेबी ने ऐसे एफपीआई को अतिरिक्त जानकारी देने की अनिवार्यता से छूट दे दी है जिनकी भारत में किसी एक कॉरपोरेट समूह की इक्विटी में 50% से अधिक की भागीदारी है। ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल के मूल्य में सप्ताह के दौरान 3% से अधिक की तेजी दिखाई दी। एक बैरल की कीमत $85.33 दर्ज की गई और अमरीका में अगले सप्ताह फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले ब्याज दरों को लेकर निवेशकों की दुविधा के बीच वॉल स्ट्रीट में डाउ में 0.5% की गिरावट देखी गई।
And on to our first headline, the Securities and Exchange Board of India, the markets regulator, has exempted certain foreign portfolio investors from the additional disclosure framework. The SEBI board yesterday approved a proposal to exempt additional disclosure requirements for FPIs having more than 50% of their India equity AUM in a single corporate group. The SEBI board approved a proposal to relax the timelines for disclosure of material changes by FPIs. Currently, FPIs must disclose to their designated depository participant any material changes to information provided earlier within 7 working days.
और इस बीच कोलकाता से हमारे श्रोता साहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहा जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, लगता है हमारा संपर्क भंग हो गया है साहा जी के साथ। और जैसा कि आज की हम खबर देख रहे हैं कि सेबी ने ऐसे एफपीआई को जो अतिरिक्त जानकारी देने की छूट दे दी है जिनकी भारत में किसी कॉर्पोरेट समूह की इक्विटी में 50% से अधिक की भागीदारी है, तो प्रकाश जी आप क्या कहेंगे, ये कदम सेबी ने क्यों उठाया और इसके पीछे क्या क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं?
जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
जी,
तो जो एफपीआई जो हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहां काफी बड़े स्केल पे ऑपरेट करते हैं
जी,
उनके लिए एक तरह का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बहुत अहम फैसला है ये
जी।
और इसमें काफी चेक्स एंड बैलेंस भी सेबी ने डाले हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई अक्रॉस द बोर्ड डिस्पेंसेशन बना दी
जी।
तो उसमें जिन जिन कंपनियों में, खासतौर पे जिन कंपनियों में कोई प्रमोटर कैटेगरी नहीं है
जी,
एक प्रमोटर कैटेगरी नहीं है, वाइडली हेल्ड जिसको मतलब जिनकी भागीदारी जो है सब पब्लिक के पास है, और उन कंपनियों में एफपीआई की भागीदारी को स्मूथ करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए ये एक अच्छा कदम है। इससे मार्केट को, क्योंकि आफ्टरऑल जो इन्वेस्टर होता है उसको प्रोसीजरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए ना, और तभी आपका माहौल अच्छा बनता है, तो ये एक अच्छा कदम।
तो इसका मतलब जो देश में हमारा विदेशी निवेश है उसमें काफी बढ़ोतरी होगी।
बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए
जी।
एंड वी हैव अ कॉलर फ्रॉम दिल्ली, भरत। भरत, कैन यू हियर अस?
भारत भूषण सर
जी। भारत जी बताइए।
सर, मार्केट मंदर टीम का नमस्कार।
नमस्कार
प्रकाश सर को भी नमस्कार। सर मेरा प्रश्न ये है कि जनवरी के मुकाबले फरवरी में हमारे देश के औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा 4.2 से घटके 3.8 आ गई है, ठीक है सर, जिसमें कि बिजली खनन और अपना विनिर्माण क्षेत्र की खराब प्रदर्शन रहा है सर, तो इस हिसाब से अगर चला तो हमारे जीडीपी में भी सुस्त चाल रहेगी। दूसरा सर, जो भारतीय खाद निगम है उन्होंने 2023-24 में 3,80,00,000 मैट्रिक टन खरीदने के अनाज की उन्होंने अनुमान जताया था, बल्कि उन्होंने खरीदारी करी है 2,48,00,000 मैट्रिक टन ही, तो 2,41,00,000 मैट्रिक टन, ऐसा क्यों सर अनुमान में उनका फेल कैसे हो गया? धन्यवाद।
क्या आप थोड़ा सा सवाल हल्का सा रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सुनने
जी। उनका पहला, द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग हाउ द स्लो डाउन इन आईआईपी, द लेटेस्ट नंबर्स दैट केम आउट, हाउ विल दैट हैव अ रिपरकशन ऑन जीडीपी, and the second question was related to how the estimate for procurement, basically agricultural reprocurement, was slightly off the mark, the government's estimate, compared to what they actually procured. So why was there a discrepancy between the assessment and the actual procurement?
Well, let me talk first about the IIP issue. The IIP numbers that he's talking about keeps varying month on month. And, you know, there are certain months because of certain seasonal factors also. But overall, the GDP, you know, as you know, our GDP is largely dependent on the services sector, which is really booming. And even in terms of IIP, there could be some flips here and there. But overall, see, the services sector is really boosting the economy. And I don't think that this is a serious issue to be bothered about, because this will play out in a very positive manner. Your next question related to the procurement of wheat. Well, the wheat procurement would start only next month, because of the, you know, now the wheat would be harvested. So there are some concerns because of the rain, because the sowing was little delayed, and there are concerns, but our stock that we have, closing stock, is much above the buffer stock norm that we have. So in that case, well, it is going to be a challenge for Food Corporation of India, and you have to make extra effort, and some of the states are also have announced some in Thursday what is called a bonus on top of the minimum support price. So let's wait, and I'm positive that at least will not be quite off the mark, it could be somewhere near the target.
Aur Kolkata se hamare shrota Vikas line pe hain. Vikas ji namaskar, bataiye kya puchna chahte hain?
Namaste Arjun Mantra
ji, sawal puchiye.
बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं इसके लिए सबको, थैंक यू
जी, धन्यवाद आपका जी।
रेलवे सेक्टर और कितना डाउन जाएगा, अभी होल्ड करना चाहिए? 30% रिटर्न अभी आ रहा है, लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा 10 साल के लिए
जी।
देखिए जी, रेलवे सेक्टर मार्केट जहां तक उसका ताल्लुक है, रेलवे सेक्टर बहुत तेजी से चढ़ा था, तो जो आप पूछ रहे ना कितना डाउन जाएगा, तो भाई ऐसा है, इतना ऊपर चढ़ गया था तो ये डाउन वाली बात प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ी करेक्शन है, और इस करेक्शन को लोग हेल्दी मान रहे हैं। एकदम से थोड़ी चढ़ावट, एक वन वे ट्रैफिक नहीं होता ना, तो उस सूरत में आप चिंता ना कीजिए, लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो रेलवे इज ए ग्रोथ स्टोरी, आप घबराइए मत।
थैंक यू सर।
कोलकाता से हमारे श्रोता अतनु जी लाइन पे हैं। अतनु जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
हाँ नमस्कार, गुड इवनिंग सर, आई अतनु फ्रॉम कोलकाता। सर माय क्वेश्चन इज हाउ इलेक्शन एंड इलेक्शन इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस आवर स्टॉक मार्केट ऑन अपकमिंग मंथ। थैंक यू।
देखो जी, इलेक्शन हमारी डेमोक्रेसी का बहुत वाइटल है और इलेक्शन कोई पहली बार तो नहीं, और इलेक्शन होते हैं हर पांच साल में, स्टेट असेंबली के भी इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन का कोई लंबा चौड़ा कोई ऐसा मार्केट कोई कोई फर्क पड़े, मार्केट तो वैसे ही डिस्काउंट कर देती है चीजों को, सो मुझे नहीं लगता कोई इलेक्शन का लंबा चौड़ा है। बाकी ओवरऑल इकोनॉमी हमारी जो है साउंड ट्रैक पे है, अच्छी उस पर है, वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इलेक्शन तो होने जरूरी है, अच्छी बात है। इलेक्शन होंगे तो अगली सरकार आएगी, फिर अगली सरकार अपनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेके आएगी, इसी उम्मीद से हम इलेक्शन करवा रहे हैं
जी। और चलते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस सप्ताह के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में 3% से अधिक की तेजी दिखाई दी। अमरीका में मांग बढ़ने के चलते ऐसा हुआ। ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल का फ्यूचर्स मूल्य सप्ताह के अंत में $85.33 प्रति बैरल दर्ज किया गया। यूएस क्रूड फ्यूचर्स मूल्य सप्ताह के अंत में $81.09 रहा। इस बीच वर्ष 2024 में दुनिया में तेल की मांग 13 लाख बैरल प्रतिदिन तक बढ़ने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्था के आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने तेल की मांग 1,10,000 बैरल प्रतिदिन थी। संस्था ने आशंका व्यक्त की है कि इस वर्ष यदि ओपेक समूह के देशों ने उत्पादन में कटौती जारी रखी तो आपूर्ति में मामूली कमी आ सकती है। हम इस खबर पर प्रकाश जी आपके साथ चर्चा करेंगे। इस बीच कोलकाता से हमारे श्रोता देवानंद जुड़ चुके हैं। देवानंद जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में मेरा क्वेरी है, अभी इंजेक्ट करना सही रहेगा?
आप रिपीट कर सकते हैं एक बार, कौन सा सेक्टर?
डिफेंस।
ओके, डू यू हैव एनी लॉन्ग व्यू एटसेट्रा, एनी क्वेरी?
ऐसा लॉन्ग व्यू ऑफकोर्स, 10 ईयर।
ओके, थैंक्स देवांजन।
इंग्लिश हिंदी
विचार।
हाँ, तो डिफेंस सेक्टर में जो हमारा आपका क्योंकि व्यू बहुत लंबा है और हमारी जो डिफेंस स्टोरी है वो जबरदस्त है और उसमें हम लोग आत्मनिर्भर के उस पर काफी आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग इसमें चाहते हैं कि हम खुद सारी मैन्युफैक्चरिंग, काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट R&D सब यहीं करें, तो सेक्टर में काफी बदलाव हो रहे हैं और क्रिटिकल बदलाव, स्ट्रेटेजिक बदलाव हो रहे हैं। उसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी अच्छी हो रही है, सरकारी कंपनियां भी टॉप क्लास चल रही हैं, उनकी बैलेंस शीट इम्प्रूव हो रही है और इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और उनका सेंटीमेंट जबरदस्त है। इन्वेस्टर जो है ना वो लैप अप कर रहा है उसको, तो वो जो सेंटीमेंट है दैट इज ग्रेट। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बने रहिए डिफेंस सेक्टर के साथ और अच्छा ग्रोथ स्टोरी।
एंड वी वांटेड टू सर्कल बैक टू द यू नो द चेंजेस इन ब्रेंट क्रूड प्राइसेस। देयर हैज बीन अ 3% राइज ड्यूरिंग द वीक टू $85.33 पर बैरल, बट एट द सेम टाइम देयर हैज बीन अ सर्टन, इफ यू कुड कॉल अ विंडफॉल फॉर आवर कंज्यूमर्स, बिकॉज देयर वाज सम रिलीफ दैट वाज प्रोवाइडेड in you know petrol and diesel prices. So how do these two you know headlines, how would you compare these two, how would these be sustainable?
Actually the crude prices $85 per barrel, so there is this news that there might be some shortfall, that's the expectation. My own assessment is that given the global economic scenario, the demand for crude is not going to go too high because you have problem in the global demand. So for instance, there is not a great news from Chinese economy or the and most of the developed world is facing slowdown, so those circumstances don't foretell us that crude is really going to go off the ceiling, so not a big problem. Well, there's an assessment, but nothing to be alarmed about it. That's what my assessment is.
Thank you, sir. And going back to Kolkata, we have our next caller, Ravi. Ravi ji, welcome and please ask your question.
Namaste.
Namaste.
Is it related to government act principle passed here?
जी फिर से
बाहर से जो बाहर फॉरेन जो टीवी कंपनी है
रवि जी अपना सवाल दोहराएंगे और ठीक से सुनाई नहीं दिया
ईवी रिलेटेड गवर्नमेंट ने प्रिंसिपल पास किया
ओके ईवी पॉलिसी या
बाहर जो कंट्री का कंपनी है वो ईवी इंडिया में ला सकते तो इसमें इंडिया का जो कंपनी है ईवी सेक्टर में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा
इसमें देखिए उसमें चेक्स एंड बैलेंस प्रोवाइड किए गए हैं पॉलिसी में और पॉलिसी में बड़ी अहम बात है कि बाहर से लाएंगे आप अलाउ करेंगे लेकिन ये नहीं कि आप हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो सूरत में आपको मैन्युफैक्चरिंग भी करना पड़ेगा आपको इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा तो आपका जो हमारा इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोर्ट अलाउ होगा इट्स बेस्ड ऑन दिस premise that you will be bringing us investment here to manufacturing setup aap banayenge to aaj ki date mein domestic company foreign companies kuch nahi hota hamare automobile sector mein foreign investment allowed hai to ek us sector mein ev mein bhi allowed hai but aapko manufacturing yahan lana padega to usse sector aur vibrant banega manufacturing aayegi aur logon ko competition milega koi samasya nahi
Thank you, sir. And just a question in our listeners' interest. Recently, according to RBI data, as of the week ending March 8, our forex reserves have surged to almost a two-year high by $10.470 billion to $636.095 billion. So, could you talk about the implications of this in terms of, you know, trade and how this weaves into the larger narrative of economic growth that India
Well, the biggest impact of this is and would be that it would provide quite a good amount of stability in the foreign exchange market. So our foreign forex rates will not see, are not expected to see any volatile movement because we are sitting on a good amount of So generally RBI follows a policy of non-interference. They allow, RBI allows market forces to decide the rate. But should any situation arise, so RBI has enough ammunition now with these kind of reserves that you talked about. So this gives a lot of, and naturally it strengthens the Indian INR because it also tells you, the forest reserves also tell you the kind of bandwidth that we have in the Indian economy.
जी और इस बीच जयपुर से हमारे श्रोता जितेंद्र लाइन पर हैं जितेंद्र जी नमस्कार बताइए क्या पूछना चाहते हैं
हाँ सर जैसे सोविनियर गोल्ड बॉन्ड है उसके बारे में तो हम लोग को पूरा आइडिया है तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो कैसे कार्य करता है एक आदमी जैसे उसको परचेज किया और दूसरा आदमी बुनाया
नहीं जितेंद्र जी हमारा जो मार्केट मंत्र कार्यक्रम है ये एक आर्थिक विषयों पर केंद्रित कार्यक्रम है राजनीतिक विषयों को हम इसमें नहीं लेते तो अगर आपका आर्थिक किसी भी विषय से जुड़ा हुआ कोई भी समाचार है कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं लगता है जितिन जी से हमारा संपर्क भंग हो गया है कोलकाता से हमारे श्रोता मनोज लाइन पे है मनोज जी नमस्कार बताइए क्या पूछना चाहते हैं
जी नमस्ते
जी सवाल पूछिए
मार्केट और मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए ये थोड़ा रुकना इंतजार करना चाहिए मार्च महीने के बाद करना इन्वेस्ट करना सही रहेगा
जी
आपने पूछा स्मॉल कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप में पिछले चार पांच दिन से काफी उथल पुथल हो रही और इसमें हमारे जो सेवी चेयरमैन हैं उन्होंने ये भी थोड़ा बहुत संकेत दिया था कि इसमें जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रॉथ काफी सारी झाग आ गई है और उसकी वैल्यूएशन के लेकर कुछ शंका थी और उसके चलते सेवी चेयरमैन ने जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं उनको एक हिदायत दी कि इनका आप स्ट्रेस टेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड्स का तो स्ट्रेस टेस्ट से थोड़ा बहुत जाहिर यही हो रहा है कि इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो इस सूरत में आपसे आपको ये एडवाइस देनी चाहिए कि आप अपना थोड़ा ध्यान रखिए, कोई हड़बड़ाहट में मत कीजिए, इसको सेटल होने दीजिए और थोड़ी क्लैरिटी आने दीजिए, उसके बाद ही अपना मूवमेंट शुरू कीजिए।
जी, एंड
प्रकाश जी, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे श्रोता हमारे इस बात को लेकर काफी सजग हैं कि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो शेयर बाजारों का क्या हाल होगा, और इधर लगातार कई दिनों से हम देख भी रहे हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि निवेशक, छोटे निवेशक खासतौर से चिंतित हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो ऐसे में आप छोटे निवेशकों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
कोई घबराने की जरूरत नहीं, इलेक्शन, मैंने जैसे जिक्र किया, इलेक्शन तो होने हैं ना, हमारी इतनी वाइब्रेंट इकोनॉमी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है हम लोग, इलेक्शन तो होने हैं, मार्केट को पहले से ही मालूम है इलेक्शन होने हैं, तो घबराहट। अच्छा, पिछले दो तीन दिन में मार्केट अगर गिरी तो एक कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट में गिरी है और वो करेक्शन है, वो बड़ी हेल्दी करेक्शन है
जी,
उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन आएंगे, नई सरकार आएगी, नीतियां नहीं आएंगी, अच्छी नीतियां आएंगी, हम इसी उम्मीद पे चलते हैं, इलेक्शन ने कोई मार्केट को सरप्राइज नहीं दिया है, इलेक्शन तो होने
जी, जी,
है ना, तो इसको उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं
जी।
एंड वी मूव ऑन टू आवर दिल्ली टू आवर नेक्स्ट कॉलर देव। देव, वेलकम टू द शो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
हाँ जी, नमस्कार सर।
नमस्ते
सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 3 जून के महीने में मेरी कुछ एफडियां लगभग 30-35 लाख की वो मैच्योर हो जाएंगी, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगाऊं, क्या उस समय ठीक रहेगा कि मैं फिर अपनी कंटिन्यू रखूं एफडी, क्योंकि नई सरकार आएगी, आप बता रहे हैं कि उसमें मार्केट कहाँ आ जाए, ऊपर नीचे जैसे भी होती है, तो इसके विषय में थोड़ा कंफ्यूजन है, और मेच्योरिटी की डेट के बाद मेरी एज भी सीनियर सिटीजन हो जाएगी, तो उसमें क्या मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा?
जनाब, आप सीनियर सिटीजन होने जा रहे हैं और अभी महीना चल रहा है हमारा मार्च का, तो जून तो अभी स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 महीने बड़ा लंबी अवधि होती है, और लेकिन हम आपको इंडिया ग्रोथ स्टोरी के बारे में बता सकते हैं कि जून में भी हमारी इंडिया ग्रोथ स्टोरी चालू रहेगी, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी होती रहती है, लेकिन रॉबस्ट मार्केट है हमारी, और ऐसा नहीं है कुछ वो है, लेकिन आप जून में अगर आपके पास पैसा कुछ आ रहा है तो उस टाइम हमारी आपसे ये एडवाइस है, दोबारा रिव्यू कीजिए कि उस टाइम बैंक्स के इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं, क्योंकि बैंक्स के इंटरेस्ट आजकल अच्छे मिल रहे हैं, बैंक्स के इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं, और अगले 2 महीने में मार्केट कैसे बिहेव करती है, और फिर आप फिर देखिए, म्यूचुअल फंड में भी आपके पास ऑप्शन हो सकती है, डायरेक्ट मार्केट में जाने की ऑप्शन हो सकती है, तो जितना पैसा आपका अवेलेबल होगा तो उसको हमारी सलाह रहेगी आप थोड़ा बांट के उसको इन्वेस्ट कीजिए, डिवाइड करके, एक ही उसमें आप अगर आपका मार्केट में जाने की तरफ रुझान है तो आप उस इस तरीके से जाइए कि आप सारा का सारा एक लॉट में आप मार्केट में मत डालिए, अगर आप डालना भी चाहते हैं तो जिसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, सिप के माध्यम से जाइए और उस तरीके से सेफ एंड साउंड तरीके से जाइए।
And moving on to our next news item, on Wall Street, stocks fell yesterday, led by technology-related mega caps that have propelled this year's rally, while investors weighed the interest rate outlook ahead of next week's Federal Reserve meeting. So, the Dow Jones Industrial Average fell 191 points or 0.5% to end at 38,715. The S&P 500 lost 33 points or 0.7% to close at 5117, and the Nasdaq Composite dropped 155 points or 1% to 15,973. Major indexes registered slight declines for the week. The Dow Jones was down 0.02%, the S&P 500 was down 0.1%, and the Nasdaq was down 0.7%. The economic data released yesterday showed production at U.S. factories increased more than expected in February. Also, the University of Michigan's preliminary reading on the overall index of consumer sentiment came in at 76.5 this month. And with that, we have our next caller from Kolkata, Sanjay. Sanjay, welcome to the show. Please ask your question.
Yeah, sir. Steel sector ka future ke barme mein janna chahta hu. Abhi aur girega?
स्टील सेक्टर का, स्टील सेक्टर में कोई समस्या नहीं है, कोई ऐसे आपको डरने की जरूरत नहीं है, गिरेगा क्यों गिरेगा भाई, स्टील सेक्टर में मेटल है और हमारी खासतौर पर हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग जो है काफी अच्छी उसकी शेप हो रही है और हमारी डिमांड भी अच्छी है। इकोनॉमी हमारी अगर हम लोग 7% से ग्रो कर रहे हैं तो जाहिर बात है मेटल की डिमांड बनी रहेगी। ये जो आप गिरने की बात कर रहे हैं और गिराई ये चलती रहती है, बीच बीच में वॉलेटिलिटी आती है तो ये कोई, लेकिन अगर आप अंडर करंट देखें स्टील सेक्टर का या पूरा उसका तो अंडर करंट अभी भी काफी स्ट्रांग है, आपको घबराने की जरूरत नहीं।
तो जो भी रिटेल निवेशक हैं प्रकाश जी, सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो आप कौन से ऐसे दो या तीन सेक्टर्स हैं जो आप रिकमेंड करेंगे निवेशकों को?
रिकमेंड करेंगे जो अगर आप चाहते हैं कि सेफ एंड साउंड और अच्छे हों और जो फ्रॉम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो आने वाले 2-4-6 महीने में, तो जो अभी चीज रॉक कर रही है जिसको अंग्रेजी में लोग बोलते हैं रॉक कर रहे हैं
जी।
तो वो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, कोई भी चीज रिलेटेड टू टूरिज्म, चाहे वो होटल्स हो, एविएशन हो, ट्रैवल का हो। एक तो ये सेक्टर बड़ा अच्छा चल रहा है
जी,
क्योंकि वो पूरी री रेटिंग हो रही है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, उन लोगों ने अपना भी ना तरीका भी कुछ बदल लिया है जिसको एसेट लाइट मॉडल बोलते हैं, होटल्स वाले उस तरह से रहे हैं। और एविएशन देख रहे हैं आप एयरपोर्ट पर जाइए कितनी चकाचक वहां पे भीड़ होती है, तो लोग मूव कर रहे हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म बड़ा अच्छा चल रहा है
जी।
और रिलीजियस टूरिज्म अच्छा चल रहा है, तो पूरा आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर, पूरा आपका होटल सेक्टर, ऑनलाइन बुकिंग सेक्टर
जी,
ये
जी।
बड़ा अच्छा सेक्टर है। फिर जैसे कुछ सेक्टर हैं जैसे अब स्ट्रेटजिक जो कैपिटल गुड सेक्टर है, बिकॉज सरकार का जो फोकस है उसके काफी चालू रहने वाला
जी। प्रकाश जी, चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।
Before we close, a reminder of the headlines. SEBI exempts additional disclosure requirements for FPIs having more than 50% of their India equity AUM in a single corporate group. Brent crude oil prices rise over 3% during the week to end at $85.33 a barrel, and on Wall Street, the Dow ends 0.5% lower as investors wait interest rate outlook. That's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.